ओम शांति। रत्नागर शिव बाबा के अनमोल रत्न आदरणीय राजू भाई आज हमारे सम्मुख है। सर्वप्रथम हम राजू भाई का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। आज हमारे इस योग भट्टी का प्रथम सत्र है और आज हमारा ये प्रथम क्लास है जिसका भट्टी का लक्ष्य और आंतरिक तपस्या ये विषय है। आदरणीय राजू भाई जी, जो हम बाबा की मुरली रोज सुनते हैं और उसमें जो वरदान और स्लोगन है वो आप हमें तैयार करके भेजते हैं, और जो हम महीने में दादी जी का जो पत्र पुष्प आता है वो भी आप ही भेजते हैं, तो ऐसी रूहानी पालना देने वाले आदरणीय राजू भाई जी, जो 1972 से ही इस ईश्वरीय कार्य में समर्पित हुए और ग्राम विकास विंग के आप मधुबन कोऑर्डिनेटर भी है, दीप तो जलते हैं, खुद कब कुछ कहते हैं, रोशन कर जहां को, खुद ही रोशन हो जाते हैं। ऐसे ही ज्ञान की रोशनी फैलाने वाले, सादगी से भरपूर, ज्ञान से परिपूर्ण आदरणीय राजू भाई जी आज हमें भट्टी का लक्ष्य एवं आंतरिक तपस्या इस विषय पर हमें मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय राजू भाई जी अब हमें इस विषय पे मार्गदर्शन करेंगे। ओम शांति। अभी हम सुनेंगे राजू भाई से।
ओम शांति। बाबा की इस तपस्या भूमि में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मधुबन साकार ब्रह्मा बाबा और मीठी माँ का तपस्या भूमि, कर्म भूमि और चरित्र भूमि है, जहाँ पर स्वयं आदि पिता ब्रह्मा बाप, आदि देवी सरस्वती माँ और हमारी आदरणीय दादियों ने तपस्या की। उस तपस्या के सुंदर वायुमंडल के बीच में आप सभी योग भट्टी के लिए यहाँ आए हैं। मधुबन धरनी ही ऐसी है जहाँ योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्वतः बाबा की याद आती है, एक गीत है, पत्ते पत्ते से कण कण से तेरी याद आती है। तो इस भूमि पर जिधर भी आप जाएंगे, ब्रह्मा बाबा ने इस भूमि पर क्या किया, कैसे रहे, कहाँ बच्चों से मिलते थे, कहाँ भोजन करते थे, कहाँ पत्र लिखते थे, कहाँ मुरली सुनाते थे, कहाँ खेल पाल करते थे, वो सारे स्थान, सभी तीर्थ स्थान यहीं पर हैं। तो इस चारों धामों की यात्रा भी आप सब करते रहेंगे और साथ साथ तपस्या का आंतरिक सुख भी लेते रहेंगे। ये भी बहुत बड़ा भाग्य है जो पिछले साल भी हमारी सुषमा बहन को ये टर्न मिला था और इस बार फिर से मिल गया। दो साल तक किसी के नंबर नहीं आ रहे हैं, आपका एक साल में ही आ गया। वैसे तो शांति वन में बहुत अच्छी भट्टियों की लहर चलती है। इस समय कुमारों की भट्टी चल रही है, करीब 1400 कुमार मधुबन सहित पहुंचे हुए हैं। उनके कई कार्यक्रमों में मुझे वहां रहना था, लेकिन हमारी बहनों ने, चंद्रकला बहन ने दो बार फोन किया कि आज आपसे ही प्रारंभ करना है भट्टी का, तो मैं अभी अभी नीचे से ऊपर आया हूं। हम सब की इस तपस्या भट्टी का मूल लक्ष्य क्या है, किस लिए हम सब समय निकाल कर भाग भाग करके अपनी सब सेवाएं, बिजनेस, नौकरी छोड़कर छुट्टियां लेकर के मधुबन में आते हैं। तो जरूर कोई उद्देश्य होगा, कोई लक्ष्य होगा जिस लक्ष्य को पाने के लिए इस भूमि पर आए हैं। वैसे वर्तमान समय बाप दादा की विशेष प्रेरणा रही है कि बच्चे अब अपनी श्रेष्ठ वृत्तियों से वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करो। आज बाबा की मुरली में एक बहुत सुंदर स्लोगन था, संकल्प शक्तियों को जमा करके, संकल्प की जो शक्तियां हैं उनको जमा करके स्व के लिए और विश्व के लिए सेवा के निमित्त बनो। तो यही एक लक्ष्य लेकर के अगर आप 3-4 दिन भट्टी करेंगे कि मुझे अपने संकल्प की शक्ति को बचाना है, कोई भी संकल्प साधारण संकल्प न हो, व्यर्थ तो आने की बात भी नहीं है, क्योंकि ऐसी भूमि है जहां पर व्यर्थ को आने का अलाउ नहीं है, इसलिए व्यर्थ तो सोचना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है, लेकिन साधारण संकल्प भी न उत्पन्न हो। साधारण संकल्प समझते हैं क्या होते हैं? इस बार दादी जानकी जी से कई बार रूह रियान हुई नीचे, तो दादी का चिंतन तो बड़ा ऊंचा रहता है हमेशा ही, तो मेरे से दादी ने एक प्रश्न किया, साधारणता और श्रेष्ठता में क्या अंतर है? साधारण संकल्प और श्रेष्ठ संकल्प में क्या अंतर है? तो दादी ने ही सुनाया, साधारणता उसको कहते हैं जिससे दूसरों को कोई भी प्रेरणा प्राप्त नहीं होती। अगर कोई अच्छी बात की प्रेरणा हमसे मिल रही है लोगों को आगे बढ़ने की, उन्नति की, तो उसको साधारण नहीं कहेंगे। अगर हम खाते पीते उठते बैठते चलते कर्म तो कर रहे हैं लेकिन उनसे दूसरों को कुछ सीखने को नहीं मिलता, कुछ उनकी उन्नति नहीं होती, तो वो साधारणता है। और श्रेष्ठता उसको कहते हैं जो हम संकल्प करें, बोल बोलें, कर्म करें, उनसे दूसरों को प्रेरणा मिले और वो अपनी उन्नति कर सकें। तो इसलिए इस भूमि को, ये अलौकिक भूमि, तपस्या भूमि, असाधारण भूमि है। इस भूमि में साधारण संकल्पों में भी समय न जाए, बहुत ध्यान रखेंगे। अमृत वेले से रात्रि तक की जो यहाँ ये दिनचर्या बनी हुई है, ये बहुत नंबर 1 दिनचर्या है। हम कहते कोई स्पेशल भट्टी के लिए सवेरे सवेरे 2 बजे 1 बजे उठने की जरूरत नहीं है। अगर अपनी दिनचर्या के प्रमाण भी आप 4 से 5 भी एक अच्छी तरह से तपस्या करें, अमृत वेले का योग पावरफुल हो जाए, और उसके बाद जो दिन के क्लासेज हैं, बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल है, नमाज शाम का योग है, रात्रि को चार्ट की चेकिंग है, जो बनी हुई दिनचर्या है अगर उसको पूरी रीति से फॉलो करेंगे तो आप अनुभव करेंगे एक बहुत अच्छे से अच्छा तीव्र पुरुषार्थ हो गया, कोई भी व्यर्थ और साधारण आया ही नहीं। इसलिए बनी हुई दिनचर्या के अनुसार यदि हम चलें और उसी के अनुसार एक दृढ़ता के साथ संकल्प ले लें कि मुझे इसमें अलबेला नहीं होना है, तो एक बात का ध्यान ये रखना कि 3-4 दिन के लिए मैं कहता हूँ एक मुख का मौन तो है ही, किसे बोलेंगे जब हमको बाबा से बातें करनी है तो आपस में नहीं, तीन चीजों का मौन करा दो, एक मुख का मौन है, एक मन का मौन है और तीसरा आजकल मोबाइल का बहुत प्रचलन हो गया, इसका भी मौन हो जाए। इसको रख दो अपने कमरों में, कोई जरूरी बात हो तो मिस कॉल देख करके, भले बहुत जरूरी हो तो कर लेना, लेकिन तीन दिन के लिए समझो कि मुझे तो केवल बाबा से बातें करनी है। बाबा की एक बात मुझे बार बार आती है, एक बार बाबा ने कहा कि बच्चे ब्राह्मण जीवन में सुनते और सुनाते तो बहुत हो, सुना भी बहुत कुछ है, लोगों को भी बहुत अच्छी तरह से सुना लेते हो, लेकिन क्या उसका अनुभव किया है? और अगर अनुभव नहीं है, सिर्फ सुनते और सुनाते हैं, तो उसका असर, उसका प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ता है। इसलिए तीन चार दिन में एक लक्ष्य रखना कि अभी तक जो हमने सुना है और सुनाया है उसका अनुभव करूं। अनुभव एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी अथॉरिटी है। अनुभव अगर एक बार हो गया तो कोई कितना भी आपको बहकाने की कोशिश करे तो भी आप कहेंगे नहीं, मेरे को अनुभव है, मुझे पता है, ये सत्य है। तो पांच सात अनुभव मैं आपको बताता हूं, अगर न किया हो तो आप चार दिन की इस भट्टी के अंदर अवश्य कर लेना, उसके लिए कुछ भी त्याग करना पड़े। क्या त्याग यहां करेंगे? नींद का थोड़ा त्याग करना पड़े, थोड़ा सा भोजन का त्याग करना पड़े, कोई भी इधर उधर की बातों का त्याग करना पड़े, सबको त्याग करके अच्छी तपस्या करके मुझे ये अनुभव करना ही है। क्या अनुभव करना है? पहला अनुभव, बाबा कई बार कहता है बच्चे आत्मा इस देह से अलग है। हम सब जानते हैं इस चोला हमने धारण किया है, लेकिन आत्मा के साथ इस चोले का इतना गहरा कनेक्शन है जो एक सेकंड भी इससे डिटैच नहीं होता। एक बार मैं क्लास करा रहा था तो एक भाई थोड़ा रमणीक था तो कहता है कि शायद आत्मा और शरीर को कोई फेविकोल से चिपका दिया गया है, अलग ही नहीं होती, ऐसी अटैच हो गई है जो एक सेकंड एक मिनट के लिए भी उस देह के वस्त्र से न्यारी नहीं होती। थोड़ा सा भी कुछ शरीर के अंदर किसी भी स्थान पर हो जाता, फट से हलचल हो जाती, देह भान आ जाता। तो एक अच्छा सा अनुभव ये करना कि मैं जो हूं जैसी हूं, अपने असली स्वरूप में स्थित हो करके इस देह को जैसे मैंने छोड़ा है, हूं शरीर में ही, छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसे लगे जैसे ये मेरा वस्त्र है, मैं अलग हूं, मैंने इसको धारण किया है। मैं कभी कभी अभी तो रोज एक अभ्यास करता हूं, सवेरे सवेरे योग के बाद कुछ समय एक्सरसाइज के लिए जब देते हैं, विशेष जैसे सौ आसन करते ना, इस शरीर को छोड़ दिया और मैं आत्मा इससे एकदम डिटैच हो गई। बाबा ने एक बार अपना अनुभव सुनाया था, साकार बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो बच्चों ने कहा बाबा उस समय का अनुभव सुनना चाहते हैं, आपने कैसे शरीर छोड़ा, कोई आत्माएं सुनाती तो नहीं है, चली जाती हैं, बाबा तो आने लगे, फिर से प्रवेश होने लगे। तो शिव बाबा ने एक दिन अचानक ब्रह्मा बाबा को कहा जाओ बच्चों को अपना अनुभव सुना के आओ। वैसे बाप दादा हमेशा साथ आते हैं, लेकिन उस मुरली में ब्रह्मा बाबा ने कहा कि आज शिव बाबा ने मुझे अकेले भेजा है कि जाओ बच्चों से मिल के आओ। तो जब ब्रह्मा बाबा की प्रवेशता हुई तो ब्रह्मा बाबा ने अनुभव सुनाया कि कैसे मैंने इस शरीर रूपी वस्त्र को उतारा, बहुत कड़ा कर्म भोग चल रहा था, हार्ट का दर्द भी बहुत था, एक ओर दर्द की फीलिंग्स भी थी लेकिन दूसरी ओर एकदम कर्मातीत स्टेज की अनुभूति थी। जब वो शरीर छोड़ने का समय था, मालूम होगा कि बाबा मुरली सुना करके, बच्चों से विदाई लेकर के, मिल करके, दादी जी को साथ लेकर के कमरे में आए, और कमरे में आकर के बिस्तर पर बैठ गए। ये जो बाबा कमरा है ना, ये चारपाई पर बैठ गए और दादी साथ में थी। दादी ने सोचा शायद बाबा की आज सांस थोड़ी भारी हो रही है, क्लास करा के आए हैं तो बाबा को मैं लिटा दूं। तो बाबा लेटे नहीं और बैठे रहे, बैठ गए और बैठ करके दादी जी को ऐसे हाथ में हाथ दिया और दृष्टि देते रहे। वही सीन बाबा ने सुनाई कि जब बाबा बच्चे को दृष्टि दे रहे थे तो दो पार्ट चल रहे थे। एक तरफ बहुत कड़ा कर्म भोग का भी हिसाब चल रहा था और दूसरी तरफ बाबा अपनी कर्मातीत स्टेज का अनुभव कर रहे थे। आत्मा कैसे शरीर से निकलती है उसका बड़ा सुंदर वो अनुभव था। अंगूठे से लेकर के वो शक्ति जैसे न्यारी होती गई, छोड़ती गई और धीरे धीरे वो शक्ति समेटते 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 जब इस भ्रकुटी पर स्थित हुई वो आंखों से निकल गई। तो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ने का वो अनुभव सुनाया था कि ऐसे बाबा ने लास्ट समय में मुझे अनुभव कराया और बड़ा न्यारा प्यारा बहुत सुखदायी अनुभव था। भोगना पर, कर्म भोग पर कर्म योग की विजय हो गई और विजय होते ही बाबा उड़ गया। एक सेकेंड लगा, ऐसे जैसे धीरे धीरे अलग हुआ और चला गया। तो हम सभी भी शरीर में हैं, इस अनुभव को हम और बढ़ाएं, किसकी जरूरत क्यों है, इस अनुभव की क्यों जरूरत है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जितने भी कर्म, जितने गलत कर्म हो रहे हैं उन सब की मूल जड़ देहमान है, बॉडी कॉन्शियस। जब हम उसमें आ जाते हैं तो कई प्रकार की अवज्ञाएं होती हैं, कई प्रकार के विकर्म होते हैं, विकल्प चलते हैं। अगर आत्मा मालिकपन की स्टेज में स्थित होने का अभ्यास करती है, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के इस देह से न्यारी हो जाती है, तो कई बाबा की मुरलियां इस समय हम सुन रहे हैं कि कर्म इंद्रियां शीतल हो जाती हैं, अंग अंग सुगंधित हो जाते हैं, एकदम आत्मा हल्की लाइट हो करके इस शरीर से जैसे अलग है उड़ने का अनुभव करती है। कोई भी कर्म बंधन अपने बंधन में खींचता नहीं है। तो ये अनुभव जितना हम बढ़ाएंगे कि ये अलग हूँ, ये अलग है, अगर मैं आत्मा जो हूँ जैसी हूँ, माना मैं एक लाइट हूँ, मैं माइट हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ, बहुत सूक्ष्म चमकता हुआ अजब सितारा हूं, उस अजब सितारे का अनुभव ऐसी भट्टी में जरूर करना। वहां योग करते हैं वो अलग बात है, सेंटर्स पर योग कई कारोबार के बीच में होता है, कई बातें ध्यान पर रहती हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन यहाँ पर आप आए हैं तीन चार दिन के लिए, आप सब कर्मों से, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त, न भोजन पकाने का चिंता है, न खाने की, आपको बना बनाया सब मिलेगा हाथ में, आराम से खाओ पियो, शांति से अनुभव करो। बस क्या हूं मैं, जो हूं, जैसी हूं, क्या मैंने उस स्वरूप को देखा है? और बाबा फिर जो है जैसा है, कहता बच्चे मैं जो हूं जैसा हूं, मुझे कोटो में कोई, कोई में भी कोई बिरला पहचानता है। कभी कभी मैं पूछता हूं बाबा आपकी क्या पहचान है ऐसी जो मैंने अभी तक नहीं पहचान पाया? वो यथार्थ रूप में बाबा का स्वरूप क्या है, पार्ट क्या है, कर्तव्य क्या है, पहचान है, हम दूसरों को भी देते हैं, लेकिन वास्तविकता जिसको हम कहते हैं पहचानना, जिस पहचान के बाद दो अच्छी स्थितियों के अनुभव होते हैं। एक, योगी का परमानंद गाया हुआ है। योगी वो है जो परमानंद की अनुभूति करता है। विचार करना, हम इतने समय से योग अभ्यास कर रहे हैं, वो सुख, वो आनंद जो सुख से ऊपर है, सुख गोप गोपियों का गाया हुआ है, अतीन्द्रिय सुख। इस ब्राह्मण जीवन में एक साकारी याद के अंदर, जैसे गोपियां श्री कृष्ण के साथ डांस करती थी, उद्धव और गोपियों में यही एक अंतर बताया है। उद्धव को बहुत खराब लगता था क्योंकि वो बहुत ऊंची नजर से भगवान को देखता था, साधारण नहीं समझता था। ये विराट रूप भगवान साक्षात इस सृष्टि पर आया है, उद्धव उस नजर से, उस दिमाग से यूज करता था, और गोपियां तो उसको ग्वाले की तरह से, ग्वाल बाल के रूप में डांस करती थी, नाचती थी, मटकी फोड़ती थी, फुड़ाती थी, कुछ भी करती थी। बहुत रमणीक दृश्य था, और उनके लिए कहा गया इनको अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती थी। वो सूखा सूखा रह गया और वो सुख के अंदर समा गई। तो ये दोनों अनुभूतियां, एक परमानंद की अनुभूति है और दूसरी अति इंद्रिय सुख की अनुभूति, क्या मैंने इस योगी जीवन में प्रभु मिलन के बाद की है? ये प्रभु मिलन की अनुभूतियां हैं। सचमुच अगर मुझे वो बाबा मिला है, दिल से मैं कहता हूं मुझे मिल गया, गीत तो गाते हैं ना, पाना था सो पा लिया। जब मिल गया, पा लिया, तो पाने के बाद कोई हद के सुख, हद के आनंद, इंद्रियों के आनंद, कोई रस के आनंद आकर्षित तो नहीं करते? इससे ऊपर की सुख की अनुभूति जो इंद्रियों से नहीं की जा सकती, वो अति इंद्रिय सुख का अनुभव और उस परमानंद का अनुभव मैं करता हूं। करके देखो, यहां खो जाओ बाबा के प्यार में, इतना लवलीन हो जाओ, इतना मग्न हो जाओ कि बस मैं तो तुझे ही देखता रहूं, बस रस लेता रहूं, उसको देखता रहूं। अनुभव करके देखना, एकदम रोमांचित हो जाए आत्मा, रोमांचित, जैसे रोम रोम खड़े हो जाते हैं ना कभी कभी, अचानक खुशी की लहर आती है, जैसे मिल गया, पा लिया, कुछ नहीं चाहिए अभी, संसार की कोई चीज नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया, वो अतीन्द्रिय सुख। और फिर उसके बाद एकदम मग्न हो गई, आनंदित स्टेज, उसमें शांति भी है, प्यार भी है, सुख भी है, सब कुछ समा जाता है आनंद के अंदर। तो इस दो स्थितियों का और अच्छा अनुभव, अतीन्द्रिय सुख और परमानंद की स्थिति। फिर एक चौथी बात अनुभव की, बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे तुम डबल लाइट स्टेज में आ जाओ, डबल लाइट फरिश्ता बन करके। बाबा फरिश्ते रूप में है और हम बच्चों को कहता है, आप सब का संपूर्ण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप आपका आवाहन करता है, बच्चे उसको वरने के लिए तैयार रहो। मेहनत करते हैं हम सब कि वो फरिश्ता स्वरूप मेरा निरंतर बन जाए। शरीर छोड़ने के बाद बनेगा, उसका अनुभव कौन वर्णन करेगा, करना तो अभी चाहिए ना मुझे। साकार शरीर में हूं, लेकिन इस शरीर में होते ही ऐसे अनुभव करूं कि मैं जैसे एक लाइट के शरीर में चला गया। वो लाइट माइट वाला शरीर जो है सबके साथ, हर एक अनुभव करता है, जितनी आत्मा प्योर होती जाती है, शुद्ध संकल्पों में रमण करती है, कंट्रोल वाले सीमित संकल्प हैं, उसके चारों ओर एक लाइट का सुंदर आभा मंडल बनता है, घेरा बनता है, जिसको ही चित्रों के अंदर देवताओं के चारों ओर लाइट दिखाते हैं, धर्म गुरुओं के चित्र में भी फोटो के चारों ओर लाइट दिखाते हैं, ऊरा जिसको कहते हैं, प्रकाश की काया कहते हैं। उस प्रकाश की काया को खुद तैयार करना है हर एक को। जितना मैं पवित्र संकल्पों में रमण करूं, जितने शुद्ध संकल्प, जितने कम संकल्प हों, अच्छे से अच्छे संकल्प, खुशी के संकल्प, नशे के संकल्प, स्वमान के संकल्प, वो संकल्प एक बहुत सुंदर लाइट का ओरा तैयार कर देते हैं। और ऐसे लगता है कि मैं चलते फिरते उस लाइट के ओरे में चल रहा हूं, कर्म भी कर रहा हूं, लाइट के शरीर में हूं। ये हड्डी मांस की शरीर की जो अनुभूति है, उससे डिटैच हो जाते हैं हम, ये भारीपन समाप्त हो जाता, इस शरीर का बोझ भी ऐसे लगता है अलग हो गया, खत्म हो गया। कई प्रकार के बोझ आत्मा ने उठाए हैं, जवाबदारियां हैं, कर्म हैं, संस्कार हैं, बहुत सारे बोझ हमने लिए हैं सिर पर। वो बोझ बाबा कहता मुझे दे दो, संगम पर मैं तुम्हारे सब बोझ लेने के लिए ही आया हूं, मैं तुम्हारा वर्ल्ड सर्वेंट हूं, तो मुझे दे दो। अब बाबा कितनी बार कहता है, लेकिन कई बच्चों को बोझ उठाने की आदत बनी है, फटाफट कह देते क्या करूं, ये है ना जवाबदारी, बाबा कैसे संभालेगा, वो तो निराकार है, ऊपर है, ये जवाबदारी तो मेरी है ना। और जहां पर भी मेरापन आ गया वहां बोझ शुरू हो गया, ये है ये है ये है, क्योंकि सबकी प्रवृत्तियां हैं, सबके ऊपर कोई ना कोई जवाबदारी है। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने वो पुरुषार्थ साकार में रह करके किया, अनुभव कराया कि इतने सब बच्चे हैं, इतनी सारी यज्ञ की जवाबदारियां हैं, इतनी सेवाएं हैं। उस समय तो इतना बड़े परिवार नहीं थे, इतनी प्रवृत्ति वाले नहीं थे, हर बात का फेस सामना करना ब्रह्मा बाबा को ही पड़ता था। जो भी कार्य हुआ, जो भी समस्या हुई, जो भी प्रकार की ग्लानी हुई, ब्रह्मा बाबा की हुई, सब कुछ उन्हीं के ऊपर लग गया। सब कुछ करके एकदम न्यारा प्यारा डिटैच बेगमपुर का वास, सब गम दे दिए, कुछ नहीं गम लिया अपने ऊपर। कोई भी बात बच्चे अगर पूछते भी हैं, हो जाएगा बच्चे, ठीक हो जाएगा, बाबा बैठा है, कराने वाला वो है, उसकी जवाबदारी है, मैं और तुम क्यों चिंता करें। कभी कभी हंसी में कह देता है, मुरली में सुनते होंगे, जिसके मत्थे मामिला, जिसके सिर पर कोई मामले होते हैं, उसको नींद कैसे आएगी, उसका योग कैसे लगेगा। ब्रह्मा बाबा कभी कभी कहता है, लेकिन हम बच्चों की दिल लेने के लिए कहता है कि बच्चे कहीं भारी न हो जाएं। लेकिन बाबा सचमुच डिटैच, बिल्कुल उपराम थे, तब वो अव्यक्त बने। 2-3 साल तक तो बाबा ने अपनी वो स्थिति कर्मातीत अव्यक्त बना करके रखी। बच्चे आते थे, बाबा मिलते थे, पहले जैसा मिलन नहीं था, पहले तो आकर के गोद में बाबा के बैठ जाते थे, पत्र आते थे तो बाबा सब पत्रों को पढ़ते थे, लंबे लंबे पत्र भी बाद में बाबा ने सब समेट लिया। बच्चों को पत्र लिखते थे, लास्ट पत्र कई 68 के 67 के मेरे पास हैं बाबा के, लेकिन बहुत शॉर्ट, बहुत स्वीट, थोड़े शब्दों में जवाब देना, विस्तार को बाबा ने सब समेट लिया, व्यक्त बातों को समेट लिया, व्यक्त बातों में गए नहीं। अगर किसी बच्चे ने समाचार पत्र में लिख दिया और सामने आया और फिर सुनाने लगा, तो बाबा उसको दृष्टि देके चुप करा देता, बच्चे बाबा को पता है तुमने लिखा था ना, सुनाने की जरूरत नहीं है। सब विस्तार समेट करके एकदम अव्यक्त अनुभव किया और कराया, जैसे लाइट के शरीर में है। बाबा के शरीर से भी लोगों को लगता था कि हड्डी मांस सही नहीं, एकदम हल्का। वो अभ्यास बाबा ने क्या किया होगा, सोचो विचार करो, क्या हम नहीं कर सकते। अब समय है इस अभ्यास को हम बढ़ाएं। लाइट के शरीर में जैसे मैं आत्मा चलते फिरते कोरे में कार में हूं, चारों तरफ से मेरे एक बहुत सुंदर लाइट है और मैं उस लाइट के शरीर में चमकती हुई मणि हूं, जिसको बाबा कहता है फरिश्ता ड्रेस, लाइट की ड्रेस। जिसके पांव इस धरनी पर नहीं है, धरनी पर ये पांव स्थूल नहीं हट जाएंगे, ऐसे नहीं आप उड़ने लगोगे, लेकिन कोई भी दैहिक स्मृति आकर्षित नहीं करेगी, कोई भी मिट्टी अपनी तरफ खींचेगी नहीं। जैसे देह भान से ऊपर पैर है, उठ जाएंगे ऊपर, दिखाई ही नहीं देगा। कई बार बाबा ने मुरली चलाई है, बच्चे अगर देह को ही देखने का अभ्यास है तो तुम लाइट के देह को, लाइट के शरीर को देखो, फरिश्ता शरीर को देखो। तो हम जिसको भी देखें उसकी भ्रकुटी के बीच में चमकती हुई मणि को देखें और उसके चारों ओर एक सुंदर पवित्र लाइट दिखाई दे, ये अभ्यास को बढ़ाना, इससे आत्मिक स्थिति एक नेचुरल बन जाती है और आप अनुभव करेंगे जैसे बहुत दूर दूर की आत्माओं तक ये मन वाहन बन करके सेवा कर रहा है। इसको भक्ति मार्ग में कहा है अंतर मन वाहन, अंतःवाहक शरीर। वो अंतःवाहक शरीर जो अंतिम स्थिति वाला है, जो कर्मातीत स्थिति वाला है, मन ही वाहन बनता है। आत्मा का वाहन मन है, बहुत जल्दी भागता है। वैसे भी कहा गया है मन एक घोड़ा है, इधर उधर भटक जाता है, भाग जाता है, लेकिन हम सब तो इस घोड़े की लगाम पकड़े हुए हैं। पकड़े हुए हैं ना कि भागता है कहीं, है सबके हाथ में लगाम, देखना। कभी कभी योगियों का बहुत भागता है, भगवान को बार बार अर्जुन यही एक कंप्लेन किया, लास्ट तक भी क्या कहता था, मन बड़ा चंचल है, मन नहीं रुकता है, योग नहीं लगता है। ऐसे कई बच्चे अभी भी कहते योग नहीं लगता है, मन बहुत भागता है, भटकता है, भटकाता है, क्या करूं। क्या भगवान ने उनको कहा, सिर्फ दो ही बातें कही, अभ्यास को नहीं छोड़ना, अभ्यास को छोड़ो नहीं। ऐसे नहीं थक गया, ये तो एक स्थिर ही नहीं होता है, एकाग्र ही नहीं होता है, क्या करूं। अब ऐसे एकांत के वातावरण में, इतने पवित्र वातावरण में भी अगर मन की एकाग्रता का हमने अच्छा अनुभव नहीं किया तो कब करेंगे, कब करेंगे, अब नहीं तो कब नहीं, पक्का है ना। इसलिए समझ लो कि हम आए हैं इस तपस्या भट्टी में तो इसकी इतनी एकाग्रता, एकाग्रता माना शून्यता नहीं, जड़ नहीं। कई लोग समझते हैं नेट संकल्प समाधि में हम चले जाएं। बाबा ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया है, बच्चे निर्ट संकल्प समाधि नहीं होती है, निर्विकल्प समाधि हो सकती है, निर्व्यर्थ संकल्प समाधि हो सकती है, निर्ट संकल्प समाधि नहीं होती, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, विकल्प नहीं आएगा, लेकिन संकल्प होंगे और वो भी अपने कंट्रोल वाले होंगे, जो चाहे वही करें, जो संकल्प चाहे वो उठे, नहीं तो शांत हो जाए। तो जड़ता नहीं है, शून्यता नहीं, अगर उसमें जाएंगे ना तो नींद आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा एक घंटा, कहेंगे बड़ा अच्छा अनुभव हुआ, लेकिन प्राप्ति क्या हुई, प्राप्ति कुछ नहीं होगी। प्राप्ति कराने वाला जो साधन है अगर उसको आपने जड़ बना दिया, शून्य कर दिया, तो योग के गहरे अनुभव नहीं कर सकते हैं। वो साधन है, अनुभूति का एक माध्यम है मन, और उस मन को एक अच्छा संकल्प दे दो, शांति का संकल्प, प्यार का संकल्प, खुशी का संकल्प, बहुत आनंदित संकल्प देकर, कभी परमधाम की अनुभूति करो, कभी सूक्ष्म वतन की अनुभूति करो, कभी साकार वतन में बाबा के साथ की अनुभूति करो। साधन है ये संकल्प, साधन को जड़ कर दिया तो जाएंगे कैसे, अनुभव क्या करेंगे, ये वाहन है। और इस वाहन के द्वारा हम सब जब बैठे यहां, आंख खुली हुई है लेकिन इन आंखों से नहीं देख रहे हैं, बंद इसलिए नहीं करते क्योंकि बंद करते कई बार कोई बीती हुई रील सामने आती है। अगर रील नहीं आती है तो एकदम शांत स्वरूप स्थिति करते करते निद्रा देवी आ जाती है। इसलिए बंद नहीं करो, अभ्यास ही ऐसा करो जो आप निरंतर कर सको, कर्म में कर सको, भोजन बनाते खाते कर सको, बात करते कर सको। अगर अभ्यास ही आंख बंद करने का है तो एक दो घंटा करोगे, कितना करोगे। इसलिए अभ्यास एक नेचुरल हो जाए कि जिन आंखों से देख ही नहीं रहे हैं, ये जड़ चरम चक्षुओं से देख ही नहीं रहे हैं, आत्मा अपने तीसरे नेत्र से बाबा को देख रही है, आत्मा को देख रही है, उससे बातें करके उसकी शक्ति ले रही है, बस। तो इतना अच्छा एकाग्रता का अनुभव, एकदम जैसे स्थिर हो गया। जैसे आपने देखा होगा कई मंदिरों के सामने एक पानी का कुंड होता है, और वो पानी का जो रूप है, पानी की जो क्वालिटी है, इतनी स्वच्छ है, इतनी क्लीन है, जो 50-100 फुट गहरा पानी, उसके बीच में लोग पैसा डालते हैं, 5 पैसा 10 पैसा जो भी डालते हैं, वो इतना बड़ा बड़ा दिखाई देता है। वो पानी इतना स्थिर है, शून्य नहीं है, उसके अंदर बुलबुले हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन भी जा रही है, जड़ नहीं है, शून्य नहीं है पानी, लेकिन वो स्थिर है। पहले एकाग्र करो संकल्पों को, पहले एकाग्र कर लो, फिर एकाग्र करते करते फिर स्थिर हो जाओ, स्थिर होने के बाद आप देखेंगे बिल्कुल स्पष्ट है, स्वच्छ है। जितनी स्वच्छता है उतनी स्पष्टता है, एकदम स्पष्ट आईने के आगे कोई खड़ा हो जाए, कहीं भी छोटा भी अगर दाग होगा ना चेहरे में, कहीं भी फट से दिखाई देगा। बहुत अच्छा आईना, कई नीचे ऊपर वाले आईने होते हैं ना, रूप बदल जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता। लेकिन ऐसा स्वच्छ आईना, इतना साफ आईना, एकदम अंदर से आत्मा देखे अपने आप को, मैं जो हूं, जैसी हूं, मेरे अंदर अभी तक कौन से दाग हैं, कौन सी ऐसी कमियां हैं जो मेरे इस मार्ग के अंदर रुकावट डाल रही हैं। क्योंकि बाबा हमको उसी रूप में देखना चाहते हैं, अपने साथ जब ले जाएंगे तो उसी रूप में ले जाएंगे जिस रूप में मैं इस सृष्टि पर आया था। आदिकाल की जो स्थिति थी, सतयुग के आदिकाल की, अभी की नहीं, परम धाम से जब मैं आत्मा अवतरित हुई, मां बाप का योग बल जो होगा, लेकिन जो मैं अपने योग बल से इस सृष्टि पर प्रवेश हुई आई, कितना पवित्र स्वच्छ सुंदर शरीर होगा, सतो प्रधान काया, प्रकृति भी सतो प्रधान, शरीर भी सतो प्रधान, और आत्मा भी अपनी फुल पवित्र स्टेज में इस सृष्टि पर उतरी। धीरे धीरे शरीर को लिया, संबंध में आई, विस्तार होते गए और बंधन बनते गए, अनेक प्रकार की इस पर कट चढ़ गई, मैल चढ़ गए। अब हम फिर से उस स्टेज को पाना चाहते हैं। हरेक उस स्टेज का अनुभव करो, जैसी मैं आत्मा पावन थी, स्वच्छ थी, कोई दाग नहीं था, कोई कर्म बंधन नहीं था, कोई हिसाब किताब नहीं था, उसी पवित्र स्वरूप में मैं स्थित होकर अपने घर जाऊं और फिर नई दुनिया में आऊं। मेहनत है, सहज नहीं है, थोड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, टेंशन देकर आए हो भट्टी में तो करो, बार बार अपने उस स्वरूप को इमर्ज करो कि मैं इतनी पवित्र आत्मा, इतनी स्वच्छ आत्मा, कोई दाग नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई मेरा नहीं, मैं अकेली आई थी, अकेली जाना है। आप देखेंगे बस ऐसे बैठ गए स्थिति, डिटैच हुए शरीर से और बाबा के साथ का अनुभव किया और मूल वतन की स्टेज बन गए। तो लाइट की स्टेज के बाद मूल वतन की स्टेज को अनुभव करो। कभी अनुभव किया है कि मैं परम धाम में शिव बाबा के बिल्कुल निकट जाकर के बैठ जाऊं? वो लाइट एवर प्योर है शिव बाबा की, उसको तो ही नहीं कोई प्रकार की कमी, लेकिन मेरी आत्मा भी उसी लाइट में चमकती हुई बाबा के बिल्कुल समीप जाकर के एक सितारे की तरह वहां पर बैठ जाए, जिसको बाबा कहता बच्चे अपनी वो निराकारी दुनिया की निराकारी स्टेज का अनुभव करो। बहुत शक्तिशाली स्टेज है वो, वहां पर और कोई संकल्प नहीं है। यहां आते हैं थोड़ा सा नीचे तो अनुभव होता है कि बड़ी साइलेंस है, बहुत गहरा अनुभव है। कुछ समय भी बाबा कहता 5 सेकंड 10 सेकंड 1 मिनट भी उस निराकारी स्टेज में स्थित होकर के बाबा की सब शक्तियों को समा करके फिर इस दृष्टि पर आओ। एक बार बाबा ने मुरली चलाई थी, अगर ऐसी स्टेज का एक बार 1 मिनट भी कोई ने अनुभव कर लिया, उसका असर 24 घंटे रहेगा, 24 घंटे तक वो असर रहता है। वाचा में आने की कोई अच्छी इच्छा ही नहीं होती, जैसे एकदम अलग हैं, प्यारे न्यारे हैं, अलग हैं, कोई अच्छी चीज लगती नहीं। वो निराकारी दुनिया की अनुभूति, परम धाम की स्टेज की अनुभूति, फिर अपने सतयुग की स्टेज की अनुभूति, फिर कभी कभी पूज्य स्वरूप की अनुभूति, इष्ट देव हूं, पूर्वज हूं, पूज्य हूं, पूरी वंशावली सामने है। कभी तने के नीचे बैठ करके पूरे वृक्ष को लाइट दो, कभी मंदिर की मूर्ति बनकर के पूज्य स्वरूप में स्थित होकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करो। कितने सारे अनुभव हैं। योग योग कह करके एक प्रकार से हम करते हैं और एक प्रकार से करने के कारण बोर हो जाते हैं, योग नहीं लगता, योग नहीं लगता। वैरायटी करो, कभी किसी स्टेज का अनुभव, कभी किसी स्टेज का अनुभव। चलो 10 मिनट इस स्टेज में बैठते हैं, 10 मिनट इस स्टेज में बैठ, आपका एक घंटा ऐसे निकल जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा। सिर्फ शांत स्वरूप होके बैठेंगे और वही मंत्र रोज का, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं देह से अलग हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ, जो कमेंट्री मिली पहले पहले उसी को रिवाइज करते हैं और उसमें थक करके कहते हैं योग क्या, योग बोर हो गया। इतनी वैरायटी अनुभूतियां हैं और अगर इन अनुभूतियों के अंदर कोई खो जाए तो मैं समझता हूं लगेगा ये निरंतर योगी, स्वतः योगी, सहज योगी है, योग लगाने वाला नहीं है। योग लगाने वाले से लगता है बहुत मेहनत कर रहा है। बाबा को अपने बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती है, हमेशा कहता है बच्चे भक्ति में बहुत धक्के खाए हैं, बहुत मेहनत की है, बहुत माथा घिसाया है, अब संगम पर मैं मिल गया हूं फिर भी मेहनत कर रहे हो। बाबा अपना हो गया फिर भी मैं योग लगाने की मेहनत करूं, फायदा क्या है, लगा हुआ रहे ना सदा। लेकिन जितना प्यार इमर्ज होगा, जितना बाबा के प्रति जितनी लगन बढ़ती जाएगी, उतना योग सहज और नेचुरल हो जाएगा। तो इस तपस्या भूमि के अंदर ये वैरायटी अनुभूतियां करके अनुभवों की अथॉरिटी बनना है। जैसे मैं अनुभव की अथॉरिटी हूं, कोई पूछे ना ये स्टेज क्या है, अनुभव की है आपने। एक दिन मैं क्लास करा रहा था, एक भाई पीछे से खड़ा हो गया, मेरे बोलता है आपने परमधाम देखा है, चुप हो गया। हमने कहा इसको क्या जवाब दूं, बोलता हूं देखा है तो कहेगा कैसा है, हमको भी दिखा दो। मैंने कहा भाई इन आंखों से देखने की चीज नहीं है, अनुभव तो किया है और आप भी कर सकते हो, अनुभव करके देखो ना। सुनाऊंगा ऐसा है ऐसा है ऐसा है तो आपके प्रश्न अनेक उठ जाएंगे, ये अनुभव एक बहुत बड़ी शक्ति है, अनुभव करके देख लो। और कई बार हम उस घर में गए हैं, कोई एक दिन में एक बार थोड़ी गए हैं, हर 5000 वर्ष में एक बार तो गए हैं ना। और इस संगम पर तो कितनी बार बुद्धि योग से जाते आते हैं, भले आत्मा वहां नहीं पहुंचती है जाती है, लेकिन बुद्धि बल से तो उसको इमर्ज करते हैं, उसके अनुभव करते हैं, उसको बाबा के साथ बातें करते हैं, शक्ति लेते हैं। परमधाम की अनुभूति किसको नहीं है, है सबको है और करनी भी चाहिए, क्योंकि वो जो घर है ना, घर का जो शक्तिशाली वातावरण है वो बहुत पवित्र है। जैसे इस स्थान का वातावरण व्यक्तियों के संकल्पों को, स्थितियों को बदल देता है, कोई कहे या न कहे। जो पवित्र आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं, अभी तक भी कलयुग के अंदर, वो इस भूमि पर अगर आ जाती हैं तो उनको बड़े अच्छे अच्छे अनुभव अपने आप होते हैं, कहना नहीं पड़ता है, बताना भी नहीं पड़ता, वो समझ जाते हैं कि ये बहुत अच्छा कोई तपस्या का स्थान है, किसी ने यहां बहुत तपस्या की है। एक बार एक ग्रुप आया था, संतों के यहाँ सम्मेलन होते हैं ना, संतों का ग्रुप था, तो वो यहाँ पर ऐसे ही इसको बाबा की कुटिया से शांति स्तंभ तक ऐसे ले गए पैदल, कुटिया में लाए फिर ऐसे ले गए। तो वो कहता है ये जो स्थान है ना, ये बहुत बहुत बड़ी बाउंड्री है, जैसे कोई बहुत तपस्वी आत्मा इस स्थान पर चलती थी, और इस स्थान का इधर का जो वातावरण है बड़ा शक्तिशाली है, जो इधर क्रॉस कर गया वो मुक्त हो जाएगा, ऐसे बोला हो। उसको पता नहीं है किसने तपस्या की है, क्या है यहाँ पर, लेकिन उसको ऐसे अनुभव होने लगे कि ये स्थान इतना जो है, ये जो ये रास्ता है ना, इधर से शांति स्तंभ पर जाते हैं, बाबा के कमरे से निकल करके, कुटिया से निकल करके जाते हैं, कहते ये बहुत बहुत पावरफुल, यहाँ शक्तिशाली चुंबक है, चुंबक, ऐसे बोला। एक बार एक गुरु आया था तो उसको पहले बहुत भ्रांतियां थी, सिंध का ही था और बहुत ग्लानी करता था। ब्रह्मा कुमारी के नाम से जब हमारे मेले लेते थे ना, हमारा पंडाल लगता था, तो वो पंडाल में अपना माइक लगा करके बहुत कच्ची कच्ची गालियां देता था कि ब्रह्मा कुमारियों के पंडाल में नहीं जाना, बड़े ऐसे हैं ऐसे हैं, बहुत कुछ बोलता था, माइक लगा के सामने सामने गालियां देता था। तो बहनों ने सेवा की उसकी बहुत प्यार से, दादा बाबा एक बार तो चलो आश्रम देखो तो, आपके सिंध का ही तो है। तो उसने कहा अच्छा आप बार बार कहते हो चलते हैं, तो एक बार आ गया यहाँ पर। और उसको विज्ञान भवन उस समय बन गया था, विज्ञान में ठहराया गया। लेकिन उसकी शक्ति दृष्टि बहुत थी कि ये कुमार कुमारियां ये पवित्र रहते होंगे, ये मानता नहीं था। तो कहता है कि आप लोग मुझे एक छुट्टी चाहिए, मुझे मैं रात को पहरे वाले को बोलता है मैं पांडव भवन में जाऊंगा और रात को इस पांडव भवन को सिर्फ सैर करूंगा, आप मुझे रोकना नहीं। पहरे वाले को पता था यहाँ पहरा होगा। तो 1:30-2 बजे उठ गया कमरे में और उठ करके अकेले ही यहाँ आया, पहरे वालों को बोला आप मुझे यहाँ रोकना नहीं, मैं यहाँ चक्कर लगाना चाहता हूँ, सैर करना चाहता हूँ। उसको सिद्धियां भी थी, जानता भी था। तो जहाँ दादी के कमरे हैं, दीदी के कमरे, उधर चारों तरफ बहनों के कमरे, भाइयों के कमरे, अकेले घूमता रहा, घूम घूम करके सारे वाइब्रेशन कैच किए, कहाँ क्या हो रहा होगा, कहाँ क्या है, कैसा है, सब कैच करा और कैच करके चुपचाप जाके सो गया। फिर सवेरे उसको क्लास में बुलाया गया कि आप आओ क्लास के बीच में, मुरली के बाद आया क्लास में, और आते ही दादी जी के पांव पड़ गया और कहता है कि मैंने बहुत पाप किए, मैंने बहुत गलती की है, मैंने बहुत कुछ उल्टा आप लोगों के लिए सोचा है, बाबा को मैं क्या समझता था, लेकिन ये ऐसी भूमि है, चरित्र भूमि, भगवान की भूमि, यहाँ एक भी अशुद्ध वातावरण वाला व्यक्ति नहीं है, बहुत पवित्र स्थान है, बहुत स्वच्छ स्थान है, मेरा अनुमान बिल्कुल गलत हो गया, इसलिए मैं माफी मांगता हूँ। और मैं आज से आपको कहता हूँ कि अगर आपको आवश्यकता पड़े तो मेरे 2 लाख से आपके साथ है, मैं आपका भाई हूँ। इतना प्यार से अनुभव सुना करके और एकदम पश्चाताप किया कि मेरी बहुत बड़ी भूल हो गई। तो इस स्थान की बहुत अलौकिकताएं हैं, बहुत विशेषताएं हैं, जहां स्वयं बाबा ने तपस्या की है, इस स्थान पर आने वाली आत्माओं को सुंदर अनुभव ऑटोमेटिक होते हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि आप सभी ऐसे अनुभव करके अनुभवों की गुफा में बैठ जाओ। तपस्वी गुफा में बैठते हैं, तपस्वी वृक्ष के नीचे बैठते हैं। आपको गुफा भी है, ये भ्रकुटी है, अपनी कुटिया तो है ही, जहां देह रहेगी, शरीर रहेगा, लेकिन आत्मा इस भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान है। इस कुटिया से निकल करके कभी वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, जैसे मैं कल्प वृक्ष के तने में ब्रह्मा बाबा के साथ, मम्मा बाबा के साथ बैठ करके पूरे वृक्ष को शक्ति दे रहा हूं, सकास दे रहा हूं, जल दे रहा हूं। अनुभव करेंगे ना तो एकदम अनुभव के सागर में समा जाएंगे, कोई भी इधर उधर के संकल्प आएंगे ही नहीं। इसलिए सब संकल्पों की गठरी को उतार दो। और अभी हम 10 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे, क्लास तो सुन लिया, तपस्या की गहराई भी सुन ली, यही तपस्या की गहराई है, और कोई तपस्या नहीं है। तपस्या माना ही इंद्रियों को तपा देना, जिस तपने से, जिस संकल्प से, आत्म अभिमानी स्थिति से कर्म इंद्रियां शीतल और स्वच्छ हो जाएं, शांत हो जाएं, वही तपस्या है, वो आंतरिक तपस्या। जब आत्मा अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाती है, इस देह से डिटैच हो जाती है, तो एक तपस्वी मूरत बन करके वो कर्म इंद्रियों पर राज्य करती है। कोई कर्म इंद्रिय मुझ आत्मा को अपने अधीन न कर दे, आंखें, नाक, कान, मुख, हाथ, ज्ञान इंद्रिय अथवा कोई कर्म इंद्रिय किसी भी तरह मेरे को अपने अधीन न करे। मैं मालिक हूं, मैं अधिकारी हूं, तपस्वी माना ही मालिकपन की स्टेज। तो ऐसी तपस्या हमको करनी है। 15 मिनट के लिए हम योग करेंगे अभी, 3 स्टेज का अनुभव को, बहुत विस्तार में नहीं जाना, नहीं तो भटक जाओगे। जितनी बातें सुनाई है अलग अलग अनुभव करना, बहनें कराएंगी आपको और भाई कराएंगे, लेकिन इस समय 3 स्टेज के खास अनुभव को पहले एक आत्मिक स्वरूप की अच्छी अनुभूति, जैसे एकदम देह अलग है, मैं आत्मा अलग हूं, पहले बाबा के पास जाना नहीं है, पहले एकदम मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, एक चैतन्य शक्ति हूं, एक भ्रकुटी के बीच में चमकता हुआ अजब सितारा हूं और एकदम सूक्ष्म शक्ति, उसमें सब सातों गुण इमर्ज दिखाई देंगे, जैसे शांति भी है, प्रेम भी है, आनंद भी है, सुख भी है, एकदम आत्मा मग्न है। और जब आत्मिक स्थिति बन जाएगी तो आपको लगेगा मैं बिल्कुल लाइट हूं, डबल लाइट हूं, एक ज्योति स्वरूप हूं और एक हल्की हूं। ये जब डबल लाइट रूप बनेगा तो फरिश्ता ड्रेस आपको मिलेगी, तो दूसरी स्टेज में अनुभव करना 5 मिनट के लिए, मैं बिल्कुल एक फरिश्ता हूं और एकदम लाइट के शरीर में बाबा के साथ वतन में बिल्कुल बाबा की दृष्टि के नीचे हूं। 5 मिनट आत्मिक स्टेज का अनुभव, इस शरीर के अंदर रह करके एक न्यारी प्यारी डिटैच स्थिति का अनुभव, 5 मिनट एकदम सूक्ष्म वतन की डबल लाइट स्टेज का अनुभव, और 5 मिनट के लिए अपने उस निराकारी दुनिया का अनुभव कर सकते हैं ना। तो ऐसा 5-5 मिनट का अभ्यास करो, आंख खुली रखो, इन आंखों से और कुछ देखने की जरूरत नहीं, बस मैं अपने स्वरूप को देखूं, मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, उस स्वरूप में स्थित होकर के बस इससे अलग हूं, देह और देही का अलग अनुभव करो।
सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं, कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भृकुटि बीच दरबार अपना सजाएं, मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं।
ओम शांत। बाबा अपनी रोज दरबार लगाते थे, सुना होगा आप सबने, साकार बाबा। जब शिव बाबा ने प्रवेश किया उसके पहले ही अपनी राज दरबार लगाते थे, क्योंकि राजाओं से बाबा का संबंध था, तो राजाओं को देखते थे कि उनकी दरबार लगती है, तो बाबा कहते थे मैं आत्मा राजा और मेरे सब कर्मचारी, ये कर्मचारी मेरा कहना मानते हैं या नहीं। तो बाबा ने 1936 में प्रवेश किया, लेकिन बाबा की जो डायरी हम लोगों को मिली वो 1932 की मिली, बाबा के हाथ की लिखी हुई राइटिंग। तो बाबा ने उस डायरी के अंदर अपनी पूरी दरबार का समाचार लिखा है जी, 32 की लौकिक में। जब बाबा गुरु के पास जाते थे, ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते होंगे, तो मन बहुत भागता इधर उधर है, तो उन्होंने मन को वजीर के रूप में, बुद्धि को सलाहकार के रूप में, कर्मेंद्रियों को कर्मचारी के रूप में संबोधन करके, तुम मुझे गुरु का ध्यान क्यों नहीं करने देता है, तुम मुझे क्यों परेशान करता है, तुम मुझे क्यों धोखा देता है, क्या तुमको चाहिए, ऐसे बात किया एक एक कर्मेंद्रिय से, एक एक कर्मचारी से। तो बाबा ने, साकार बाबा ने अपने अनुभव सुनाए हैं कि उसके आधार से बाबा कर्मेंद्रिय जीत बन गया, तो हम सभी भी आत्मा मालिक हैं, राजा हैं, हम सब कहते हैं। लेकिन कभी एक दरबार लगा करके इनसे पूछें तो मेरा कहना मानते हैं ये, या अपना अपना चलाते हैं। जैसे कई राजाई जो हमारे देश की राजाई गई, गंवाई राजाओं ने, उसका एक मूल कारण तो ये बना, कई कारण होंगे लेकिन एक मूल कारण ये बना कि राजाएं बहुत ऐशो आराम के अंदर रहने लगे। तो उनके जो मंत्री थे, कर्मचारी थे, उन्होंने देखा राजा तो डांस में, शराब में मगन है, मस्त है, तो उन्होंने फिर अपनी चला करके खुद उनके ऊपर राज्य कर लिया, या दुश्मनों को बात बता करके उनकी कमजोरी, उन पर चढ़ाई करा के दूसरा राज्य स्थापित कर दिया। तो इसलिए आत्मा राजा है। अगर कोई कर्म इंद्रिय राजा का कहना नहीं मानती, कर्मचारी ये नहीं मानते, तो माना राजा अपनी ऐशो आराम में मस्त हो गया है, उसको पता नहीं कि मैं राजा हूं। तो अभी के सेशन के अंदर हम आत्म निरीक्षण करेंगे। आत्म निरीक्षण करना आता है ना सबको, आत्मा की मूल शक्तियां और अपने कर्मचारियों से बात करेंगे। तो सभी अपनी अपनी डायरी पेन लो, लिखना सभी, कुछ समय मैं आपको देता जाऊंगा, एक एक प्रश्न का जवाब लिखना है। आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति संकल्प शक्ति है, और संकल्प शक्ति का जिसने, अभी लिखो नहीं, बताता हूं क्या लिखना है, सब बातें नहीं लिखने की जरूरत है, क्वेश्चन लिखना। संकल्प शक्ति को अगर किसी ने कंट्रोल में ले लिया, संकल्प पर अगर विजय हो गई, तो कहते हैं मन जीते जगत जीत, वो माया को भी जीत लेगा, जगत को भी जीत लेगा। तो इसलिए संकल्प एक बहुत बड़ी आत्मा की शक्ति है। तो हम सब पहला प्रश्न लिखेंगे, मेरे संकल्पों की क्वालिटी क्या है, मैं जो संकल्प सुबह से रात तक करता हूं उसकी क्वालिटी क्या है, साधारण है, पहला व्यर्थ है, दूसरा साधारण है, तीसरा आवश्यक है, चौथा समर्थ है। चार प्रश्नों, चार रूप में इसका उत्तर लिखना है। मेरे संकल्पों की क्वालिटी, एक व्यर्थ काम की नहीं है, विकल्प भी उसमें आते हैं, व्यर्थ संकल्प भी आते हैं, व्यर्थ में नेगेटिव भी आते हैं, वो व्यर्थ में सब गिनती करो। फिर साधारण जो नेचुरल चल रहे हैं उनके भी बहुत संकल्प चलते रहते हैं, और फिर तीसरा आवश्यक, जरूरी है, करना चाहिए, करना पड़ता है, कोई कारोबार ऐसी है, आपका बिजनेस ऐसा है, उसके बारे में संकल्प चलाने पड़ते हैं, अब वो आवश्यक है, और चौथा समर्थ, एकदम बिल्कुल ऊंचे संकल्प, शक्तिशाली संकल्प। तो चारों प्रकार के संकल्पों में पहले चेक करो बैठ करके कि मेरे संकल्पों की क्वालिटी और कितना किसमें मेरा समय जाता है। संकल्प व्यर्थ में बहुत जा रहा है, साधारण में बहुत जाता है, आवश्यक में बहुत जा रहा है, या समर्थ संकल्पों में जा रहा है, कितना समय मेरा किस रूप में व्यतीत होता है, चेक कर सकते हैं ना सभी, इसको चेक करना बैठ करके। दूसरा, जब से मैं बाबा का बच्चा बना हूं, मेरी सिविलाइज्ड हुई है, आंखें पवित्र बनी हैं, स्वच्छ हुई हैं, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं सबसे अधिक धोखा देने वाली आंखें, कल की सारी मुरली इस पर ही चली है, याद होगी बाबा ने पूरी मुरली काम और क्रोध या लोभ, जो भी विकार की उत्पत्ति है, उसमें सबसे अधिक हाथ आंखों का है, देखती हैं वैसा संकल्प आते हैं, वैसा कर्म हो जाते हैं। तो आंखें मेरी दृष्टि क्रिमिनल से सिविल, अपवित्र से पवित्र, अशुद्ध से शुद्ध, परसेंटेज लिख सकते हैं, 100% तो भी मुश्किल लगता है, लेकिन कितनी परसेंट तक मैं समझता हूं कि बाबा का बनने के बाद मेरी इस दृष्टि के अंदर वो प्योरिटी आई है। तीसरा है वृत्तियां। वृत्तियों का स्पष्टीकरण मैं ऐसे करता हूं, पहले स्पष्टीकरण करता हूं बाद में लिखो। कोई संकल्प बार बार आते हैं और बार बार आते ही कोई के प्रति मेरा दृष्टिकोण ऐसा बन जाता है कि ये व्यक्ति है ही ऐसा, फिर उसके साथ व्यवहार भी वैसा हो जाता है। वो हमारी वृत्तियों में चला जाता है, वो ही चिंतन चलता रहता है, व्यक्ति ऐसा 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 है। तो हमारी वृत्तियां निर्दोष हैं, अनासक्त हैं, या वृत्तियां अभी तक भी चंचल हैं? तीन प्रश्न दे सकते हैं इसमें। निर्दोष हैं, कोई के भी दोष इस वृत्तियों में तो नहीं है, ये इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, जैसे कोई दृष्टिकोण बन जाता है ना, देखने का नजरिया जिसको कहते हैं, ये है ये ऐसा। तो मेरा दृष्टिकोण हर आत्मा के प्रति, अपने प्रति भी, दूसरों के प्रति भी निर्दोष है। कहां पर भी आसक्त है, कोई में विशेष लगाव झुकाव खाने पीने या व्यक्ति में विशेष हो जाता, इसको हम कहते हैं कि अनासक्त है या आसक्त है। बिल्कुल हलचल से परे है वृत्ति, हलचल तो नहीं वृत्तियों के अंदर, स्थिर और एकाग्र वृत्ति है। चौथा प्रश्न है स्मृति याददाश्त। कई बातें जो बीत गई इस जन्म की, पिछले जन्मों की तो संस्कारों के रूप में इमर्ज होती, इस जन्म में भी कुछ गलत काम हुए हैं तो बार बार वो हमको सताते हैं, परेशान करते हैं। योग में बैठेंगे, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मेरे से ये हुआ, ये हुआ, बातें बार बार स्मृति में आती रहती है। उसको बाबा कहता फुल स्टॉप लगाओ, बिंदी लगा दो, भूल जाओ, जो हो गया बीत गया, कल्प के बाद होगा। लेकिन वो भूलती नहीं है, वो बार बार स्मृति के अंदर आती रहती है। तो वो स्मृतियां बार बार बीतती हुई बातों की स्मृति या भविष्य की कोई चिंता, बीती का चिंतन भविष्य की चिंता मेरी स्मृतियों में तो नहीं है, इसको एक प्रश्न दो। मेरी स्मृतियां कितनी शुद्ध हैं, एक बाबा की तरफ टिकी हुई हैं, या पास्ट की या भविष्य की कोई चिंता है? चिंतन और चिंता, एक है चिंतन चलना, पास्ट का चिंतन है और भविष्य की चिंता है। तो मैं चिंतन और चिंता इन दोनों से मुक्त अपनी स्मृति समझता हूं। जब तक चिंतन और चिंता से स्मृति मुक्त नहीं है, तब तक वो एक बाबा की स्मृति में टिक नहीं सकता। इसलिए अपनी स्मृतियों को चेक करो। फिर उसके बाद मेरे बोल कैसे हैं? आजकल जितने संबंधों में टकराव हो रहे हैं, दूरियां बढ़ रही हैं, उसका मूल कारण है बोल। बोल दिया, निकल गया। बोल पर मेरा कंट्रोल है? बोल मेरे मधुर हैं, आवश्यक हैं, दूसरों के उमंग को बढ़ाने वाले हैं, या उनमें भी साधारणता है? अगर इस ब्राह्मण जीवन में किसी ने अपने बोल पर कंट्रोल कर लिया ना, वो बहुत आगे बढ़ जाएगा। बोल बहुत नुकसान करते हैं, संबंध बिगाड़ देते हैं। इसलिए बोल को बहुत ध्यान देना, क्योंकि ऐसे बोल दिया, कोई काम का नहीं था, निकल गया, हो गया, चाहता नहीं था लेकिन हो जाता है, क्या करें। तो इसलिए बोल पर कंट्रोल कहाँ तक है, मेरे बोल कैसे हैं, मधुर हैं, आवश्यक हैं, वही बोल निकलते हैं जो काम के हैं या साधारण है, इसको चेक करना। मेरे कर्म जो बाबा के बनने के बाद जो कर्म मैं कर रहा हूं वो दूसरों को प्रेरणा देने वाले हैं? कोई भी कर्म देख करके लोगों के प्रश्न तो नहीं उठ जाते? इसको ऐसे चेक कर सकते हैं कि कर्मों के द्वारा गुणों का दान होता है, लोग उससे गुण उठाते हैं कि ये जो कर रहे हैं, बाबा कहता है जैसा कर्म करोगे आपको देख करके सब फॉलो करेंगे, तो मेरे कर्मों द्वारा गुण दान हो रहा, लोग गुणग्राही बन करके गुण उठा रहे हैं, सुख दे रहा हूं सुख ले रहा हूं, व्यवहार कैसा है मेरा, कर्मों के साथ व्यवहार को जोड़ करके देखना कि कर्म के साथ मेरा व्यवहार सुख देने सुख लेने वाला है, मेरे द्वारा कोई को दुख की अनुभूति तो नहीं होती। कोई भी कर्म से कोई आत्मा अगर दुखी हो गई तो उस आत्मा को सूक्ष्म बहुत बद्दुआएं मिलती हैं। इसलिए इस बात को बहुत गहराई से चेक करना कि कोई भी आत्मा मेरे किसी कर्म के कारण मुझे बद्दुआ तो नहीं देते। मेरा व्यवहार कैसा है सबके साथ, मिलनसार है, एडजस्ट कर सकता हूं हर परिस्थिति में अपने आप को, सुखदाई है, व्यवहार के साथ फिर संबंध, कोई भी संबंध मुझे अपने ओर खींचकर बंधन रूप तो नहीं बन रहा है, क्योंकि तो संबंधों में हम सब एक दूसरे के साथ आते हैं, संबंध छुड़ाए नहीं बाबा ने, संबंधों के बीच में रहते बाबा कहता है कोई भी संबंध अपने बंधन में न बांधे। तो एक बहुत महीन चेकिंग है, जो संबंध बने हुए हैं जो हमने बनाए हैं वो संबंध सेवा के अर्थ हैं या बंधन का रूप है? संबंध अगर सेवा के लिए हैं तो संबंध सुख देने वाले होंगे, अगर वो बंधन होंगे तो दुखी करते रहेंगे। इसलिए संबंधों में आते चेक करना ये संबंध बंधन तो नहीं बन रहे हैं, सेवा के लिए हैं, निमित्त मात्र सेवा की और न्यारे हो गए। संबंधों में आते न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस रहता है। एक लास्ट प्रश्न देता हूं, मैं अपने ऊपर अभी तक कौन से बोझ अनुभव करता हूं जो मेरे उड़ती कला में रुकावट डाल रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं मेरे ऊपर कौन से ऐसे बोझ या बंधन है जो मेरे उड़ती कला में रुकावट डाल रहे हैं? हर एक बहुत अंदर जाके देखेगा तो पता चलेगा ये बोझ है, कोई कर्म का है, कोई संबंध का है, कोई बोल का है, कोई संस्कारों का है, कोई न कोई बोझ या बंधन उड़ती कला में उड़ने नहीं देगा, बैठेंगे तो वो खींच लेगा। पता चलता है जब योग करो ना तो पता चलता है बुद्धि कैसे गई, कहाँ गई, किधर गई, वो बंधन है वो खींच रहा है या कोई बोझ है ऊपर से जो उड़ने नहीं दे रहा है? तो मेरे ऊपर कौन से ऐसे बोझ और बंधन है जो मुझे उड़ती कला का अनुभव नहीं करने देते? ये सब प्रश्न अपने आप से ही पूछना है, अपने आप को ही लिखना है, ठीक है? अंदर जा करके एकदम जैसे दर्पण को देखो और अपने आप से पूछते जाओ, लिखते जाओ, उत्तर खुद ही लिखो, कोई आपका ये पढ़ेगा नहीं। आप बाबा के आगे रखना और बाबा को बोलना बाबा ये मेरा चार्ट है, ठीक है? बाबा आपको बिल्कुल लाइट बना देगा, फिर उड़ती कला का अनुभव अच्छा होगा। जब हम लोग शुरू शुरू में भट्टी में आते थे, मधुबन में जब भी भट्टियां हुई तो दादी सबसे कहती थी पहले कर्म कहानी लिख के ले आओ, सुलेशन बाबा देगा आपको, योग में देगा या फिर क्लासेज में मिल जाएगा, जी, अगर रियलाइज कर लेता है कोई, महसूसता की इतनी गहरी शक्ति है जो परिवर्तन करा देती है। महसूस व्यक्ति कर ले कि गलत है, वो चेंज हो जाएगा। आज जितनी बातें हो रही हैं उसका मूल कारण है महसूस नहीं कर रहा है मैं गलत हूं। आप किसी को कहोगे तो उसको फील होगा कि ये फालतू मेरे को ऐसे बोलते हैं, ये गलत मुझे बोलते हैं, लेकिन अंदर से आत्मा को महसूस हो ये गलत है, ये श्रीमत के अनुकूल नहीं है। जिस दिन से महसूस कर ले, मैं परिवर्तन के लिए चार बातें सामने रखता हूं। अगर मेरे को अपना परिवर्तन करना है तो सबसे पहले बाबा की मुरली सुनते जाओ। बाबा की मुरली से हरेक को समझ मिलती है। क्यों? बाबा कहता है रोज मुरली सुनो, किसी न किसी दिन वो ठक से लगेगी ये मेरी गलती है। रोज नहीं महसूस होगा, रोज तो कभी दूसरे पर नजर जाएगी, बाबा आज उसके लिए अच्छी मुरली चलाई, आज उसके लिए अच्छी चलाई, आज वो सुनता तो बड़ा अच्छा है, वो बदल जाता, ऐसे कभी कभी आएगा, लेकिन किसी न किसी दिन लगे ये मेरी गलती है। तो पहले समझ देता है बाबा, समझ के बाद आत्मा महसूस करती है ये मेरी गलती है, मुझे नहीं करना चाहिए, रियलाइज। और जब रियलाइज होता है तो उसके लिए फिर संकल्प करना पड़ता है कि मैं कुछ करूं इसके लिए। क्या करूं? कुछ संकल्प करूं, तपस्या करूं, दृढ़ता का व्रत लूं, क्योंकि बिना व्रत के वृत्तियां चेंज नहीं होती, साधारण योग से नहीं होंगी। इसलिए बाबा कहता ज्वालामुखी योग करो, पावरफुल योग करो, जो ऐसा महसूस हो गया उसके लिए कुछ प्रतिज्ञा करो, दृढ़ता का संकल्प करो, चेंज हो जाओगे। अब उसके लिए चौथी बात, कुछ सहन करना पड़ेगा, कुछ समाना पड़ेगा, कुछ त्याग करना पड़ेगा, ऐसे सहज नहीं होगा। जैसे आपने देखा होगा जितने भी आज सिद्ध पुरुष हुए हैं, वाल्मीकि की कहानी पढ़ो, तुलसी की पढ़ो, बौद्ध जी की पढ़ो, जितने भी महान पुरुष हुए हैं उनके चारों घटनाएं सामने आई हैं, तब उस महानता को उन्होंने प्राप्त किया। आज वाल्मीकि क्या था? एक डाकू था, कितने अपराध किए, लेकिन एक समझ दी उस व्यक्ति ने, साधु संतों को जब पकड़ लिया तो उन्होंने कहा तुम ये किसके लिए कर रहे हो? तो बोला कि परिवार के लिए कर रहा हूं। परिवार के लिए कर रहे हो, अच्छा इनसे पूछो, उनसे पूछ के आओ, अगर इसका कोई सजा होगी, पाप होगा, तो क्या आप उसमें भागीदारी बन लेंगे? तो कहता अच्छा मैं पूछ के आता हूं, पहले नहीं मान रहा था, कहता शायद छूटना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, तो मुझे बांध के फिर जाओ परिवार के पास, पूछ के आओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वो गया परिवार में, पूछा तो उन्होंने कहा आपका काम है कमा के देना, बाकी आप अगर पाप करके कमा के लाते हो, किसी को मार पीट के लाते हो, तो उसकी सजा मैं क्यों खाऊंगा, वो तो आप खाएंगे। ठक से महसूस हो गया उसको कि ये गलत है, ये मुझे नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद उसने ऐसी तपस्या की, जो उसका वाल्मीकि नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ऐसी तपस्या की जो उसके सारे शरीर के ऊपर मिट्टी ने घर बना दिए, बाल जैसे ऐसे ऐसे गोल 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 गोल, इतनी कठिन तपस्या की। फिर उस सहन किया उसके लिए, बहुत को त्याग किया, फिर उसको सिद्धि मिल गई और एक ग्रंथ लिख डाला, वाल्मीकि बन गए। तो समझ, महसूसता, तपस्या और उसके बाद कुछ सहन किया, कुछ समाया, कुछ त्याग किया और एक पुरुष परिवर्तन हो गया। तो हम सबको भी अपना कोई भी संस्कार ऐसा कड़ा है जो मुझे धोखा देता है, जानते सब है अंदर है, लेकिन उसको परिवर्तन करने के लिए प्रतिज्ञा करनी होगी, दृढ़ संकल्प लेना होगा। आप बताओगे कहो सल्वेशन किसी से मिले, वही सल्वेशन दूसरा नहीं देता है, बाबा समझ देता है। क्लासेज में दादियां, बड़े भाई बहने आपको समझ देंगे, बदलना तो खुद को ही है ना, अगर हम नहीं चाहेंगे तो कौन बदल सकता है, हम चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। इसलिए सल्वेशन आपके पत्र को पढ़ने से मिल जाएगी ऐसा नहीं है, कोई पढ़े उसके बुद्धि में और संकल्प चलने लगेंगे आपके बारे में, इसलिए कोई को पढ़ाना नहीं। बाबा को सुना के बाबा से शक्ति लेना और संकल्प में दृढ़ता करके तपस्या करना, आप देखेंगे आप चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए कोई भी ऐसी बात हो, कोई भी विघ्न हो, उसके लिए अपनी विधि, अपनी युक्ति खुद ही निकालनी है, दूसरा नहीं निकाल के देता। अभी आजकल कोई किसी के लिए समस्या का समाधान है नहीं, इसलिए बाबा कहता है खुद समाधान स्वरूप बन जाओ। ये है, ये है, ये है, आप सुनाते रहोगे ना तो बात फैल जाएगी, बढ़ी हो जाए, बढ़ जाएगी, लेकिन अगर समाप्त करना उस समस्या को तो एकांत में जा करके उसको रिसर्च करके उसकी कैसे उसका हल निकालें, बाबा आपको टच करेगा, शक्ति देगा, चेंज हो जाएगी। आप इधर सुनाओ उधर सुनाओ बात फैल करके और बड़े रूप में आपको आएगी। इसलिए बाबा कहता बच्चे कहीं भी वर्णन नहीं करो, अधिक चिंतन नहीं करो, है कमी कमजोरी रियलाइज करो और तपस्या करो। तपस्या माना ये नहीं बैठ जाओ, लेकिन तपस्या का अर्थ है दृढ़ता संपन्न संकल्प। जो संकल्प करो उसमें प्रण दृढ़, कुछ भी हो जाए मरेंगे मिटेंगे करके देंगे, उसको कहते तपस्या। चेंज होना है संस्कार, अगर बदलने ही है तो कुछ भी करना पड़े चेंज हो जाते हैं, दृढ़ संकल्प कर लेना। ठीक है, तो ऐसी पावरफुल तपस्या करके बाबा के घर से एकदम स्वच्छ पवित्र डबल लाइट बन करके जाना है। चलो ओके, ओम शांति।
गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले, गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। चलो आनंद रस से मन तरल कर ले, सरल कर ले गुजरते जा रहे पल।
ओम शांति। बहुत पुराना गीत बना हुआ है हम सबका, किन शब्दों में शुक्रिया करें। आपने हमें कोई किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें हम। आपने हमें एक सुंदर शुरुआत भट्टी की दी है, लक्ष्य भी पक्का कराया है कैसे तपस्या करनी है, साथ साथ अपनी चेतना को जागृत करने के लिए, महसूस करने के लिए, रियलाइजेशन के लिए भी हमें मार्गदर्शन दिया है कि हम अपने भीतर में जाएं, इन प्रश्नों के उत्तर खोजें और महसूस करें, ताकि आज से ही हम जो भी हमें क्लासेस मिलें हम अपने अंदर उतारते जाएं, झोली भरते जाएं, और जिस दिन जाने का दिन आए तो सबका रंग बदल जाए। ये है ना, भट्टी में तो रंग बदल जाता है ना। तो सचमुच आपका बहुत बहुत सब भाई बहनों की तरफ से शुक्रिया धन्यवाद। और साथ साथ हम आपसे अभी से ही रिक्वेस्ट करते हैं, इसी भट्टी के दौरान एक बार पुनः मिलेंगे आपसे, एक बार और गहराई में आपके साथ जाएंगे।
तप करने को तपोभूमि में जयपुर वाले आए हैं, तप करने को तपोभूमि में जयपुर वाले आए हैं। स्वागत करने स्नेह में भरने, स्वागत करने स्नेह में भरने, बाबा बाहें बढ़ाए हैं, बाबा बाहें बढ़ाए हैं। तप करने को तपो भूमि में जयपुर वाले आए हैं। मन को मगन कर दीजिए प्रभु से मिलन कर लीजिए, मन को मगन कर दीजिए प्रभु से मिलन कर लीजिए। मौसम अच्छा मौका अच्छा अच्छा आप बिचारे हैं, बड़े पुण्य से चुने हुए ही प्यारे रतन पधारे हैं। मौसम अच्छा मौका अच्छा अच्छा आप बिचारे हैं, बड़े पुण्य से चुने हुए ही प्यारे रतन पधारे हैं। पद्मा पदम सौभाग्यवान ही ऐसा सुअवसर पाए हैं, स्वागत करने स्नेह में भरने बाबा बाहें बढ़ाए हैं। तप करने को तपो भूमि में जयपुर वाले आए हैं। इस भूमि पर आने से ही सहज योग लग जाता है, पांडव भवन का कण कण भी बाबा की याद दिलाता है। इस भूमि पर आने से ही सहज योग लग जाता है, पांडव भवन का कण कण भी बाबा की याद दिलाता है। बाबा मम्मा दीदी दादिया मधुबन को महकाए हैं, स्वागत करने स्नेह में भरने बाबा बाहें बढ़ाए हैं। तप करने को तपो भूमि में जयपुर वाले आए हैं। जैसे जयपुर म्यूजियम को सवारा है साकार ने, संकल्पों से सृष्टि सजाना सब कुल ऐसे प्यार में। जैसे जयपुर म्यूजियम को सवारा है साकार ने, संकल्पों से सृष्टि सजाना सब कुल ऐसे प्यार में। बादल भी ये उमड़ घुमड़ के यही संदेश सुनाए हैं, स्वागत करने स्नेह में भरने बाबा बाहें बढ़ाए हैं। तप करने को तपो भूमि में जयपुर वाले आए हैं। तप करने को तपो भूमि में जयपुर वाले आए हैं, स्वागत करने स्नेह में भरने, स्वागत करने स्नेह में भरने बाबा बाहें बढ़ाए हैं, बाबा बाहें बढ़ाए हैं। तप करने को तपो भूमि में जयपुर वाले आए हैं। मन को मगन कर दीजिए प्रभु से मिलन कर लीजिए, मन को मगन कर दीजिए प्रभु से मिलन कर लीजिए, मन को मगन कर दीजिए प्रभु से मिलन कर लीजिए।